महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें चतुर्थ प्रदेश बंध अधिकार अभी अपना शुरू हुआ है और इस पुस्तक छठवीं पुस्तक की पृष्ठ संख्या 14 पर हम आ गए। 14। देखिए अभी ये जो प्रदेश बंध है उसके स्वामित्व की यहाँ चर्चा है। ये प्रदेश बंध का अनुयोग द्वार 12 नंबर है। तो स्वामित्व में क्या कहेंगे, उत्कृष्ट का स्वामी, जघन्य का स्वामी। तो स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। हमने देखा था कि ये मूल प्रकृतियों की बात चल रही है। तो 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, तो जहां कम से कम मूल प्रकृतियां बनती है, यानी जहां 6 बनती है, तो कहते हैं कि 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर उपशामक या क्षपक 6 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है, वो उक्त 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यहां सातावेद्य को अलग से नहीं लिया, यहां पर वेदनी को अलग से नहीं लिया। वेदनी तो भी कह सकते ना, एक प्रकृति बंध, पर उसको यहाँ गिना नहीं है, 10वें तक गिना है। आप क्या कह रहे हैं, अकेली बनती है वेदिनी, उसकी बात यहाँ नहीं ली है। हाँ, मैंने 6 का एक साथ लिया है यहाँ पर। तो 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, तो हमने देखा ना उपशामक या क्षपक। आप कुछ पूछ रहे थे उपशामक क्षपक के बारे में। हाँ, वो तो लिखना चाहिए था, क्योंकि केवल उपशामक क्षपक कहने से नहीं चलेगा, सूक्ष्म सांप्रय। हाँ, क्योंकि 9वें तक तो मोहिनी का बंध है। बंध कर रहा है, वो 6 प्रकार के कर्मों का बंध कौन कर रहा है, तो सूक्ष्म सांप्रय। हमें मालूम है और उनको भी वही अभिप्रेत है, परंतु सभी लोगों को ख्याल में नहीं आता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं लिखा है, 6 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उसका अर्थ ही सूक्ष्म सांप्रय वाला, क्योंकि 9वें वाला 7 प्रकार के कर्मों का बंध करता है। हाँ, अन्यतर सूक्ष्म सांप्रय, उपशामक या क्षपक। उपशामक के पहले लिखो ना। पहले सूक्ष्म सांप्रय वाला होता है, पर उपशामक हो गया या क्षपक हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके मतलब तो योग से है, यहाँ विशुद्धि से कोई मतलब नहीं है। अब मुनि के उत्कृष्ट प्रदेश बंद का स्वामी कौन है? अब चारों गति का पंचेन्द्रिय संगी मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जी, यहाँ तो केवल हमको प्रदेश बंद कितना है, मोहिनी के खाते में कितना होता है, जहाँ सात कर्म बनता है तो कुछ सातवा भाग कुछ अधिक उसके खाते में आता है, तो ये कौन सा होगा? तो जहाँ सात कर्मों का बंद रहे, इसलिए क्या कहते हैं, जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में परिणाम योग स्थान नहीं होते, इसलिए उसको सब पर्याप्तियों से पर्याप्त कहा। सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, यानी यहाँ आयु नहीं बन रही ऐसा जीव लिया, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, वह उक्त कर्मों के यानी मोहिनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी कौन है? तो जो आयु बांध रहा है ना, जो चारों गति का पंचेन्द्रिय संगी मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है, क्योंकि हमने देखा ना उत्कृष्ट योग तो संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्तों के होगा, वह अन्यतर जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। जैसा हमने ओग में देखा ऐसा ही कथन काय योग वाले, लोभ कषाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहां से अपना आज का विषय शुरू होता है मार्गणाओं में। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है क्या? एको हो रही है ना मेरे ख्याल से? हाँ हेलो हेलो। देखो नारकियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव, जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, उत्कृष्ट योग वाला है, क्योंकि सात कर्मों का तो समान होगा ना कहीं पर भी किसी भी गुणस्थान में क्यों ना हो, और सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, वो उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव, जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, उत्कृष्ट योग वाला है और आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, क्योंकि आयु का बंध जब आठ कर्म बनते तब होगा, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में आठ कर्मों का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध करता है, क्योंकि हमने देखा था सातवें नरक में मिथ्या तो अवस्था में ही आयु का बंध होता है, भले वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, मरण के अंतर्मुहूर्त तक पहले तक समय दृष्टि रह सकता है, परंतु आयु का बंध मिथ्या तो में ही होगा उनके, सातवें नरक में, सासादन में भी नहीं होगा, और सासादन में मरकर जाता भी नहीं है सातवें से, मिथ्यात्व में, अकेले मिथ्यात्व में। किसके लिए? सातवें नरक में के लिए नहीं, नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के ही होता है, ये तो हमने हमें अनेक बार देखा था कि वो सम्यक्त्व में है फिर भी मिथ्यात्व में जाएगा फिर आयु का बंध करेगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सासादन में जाके आयु का बंध होगा, जहां मरण नहीं वहां आयु का बंध भी नहीं होता है। सातवें नरक का नारकी सासादन में ना मरेगा ना आयु का बंध करेगा। हमने कैसे देखा था तीसरे गुणस्थान की बात, ना मरण है ना आयु का बंध है, इस तरह से लेना उसको। हाँ बिल्कुल मरता है, तीनों गति का जीव सासाद नारकी भी मरता है, छठे नरक तक का नारकी। हाँ हाँ, सातवें नरक को छोड़कर की बात। हाँ तीसरे में किसी का नहीं मरण होता, चारों गतियों के ना आयु ही बनती है। अभी 15 पेज पर आते हैं, तीर्यंचों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर पंचेन्द्रिय संगी जीव जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, सम्य दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि योग से मतलब है। और सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है। आयु के बंध के काल में उनको अन्य सात कर्मों का उत्कृष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1/8 चला जाएगा साधिक, और जब सात बनते तो साधिक 1/7 चला जाएगा, है ना। भुक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर पंचेंद्रिय संगी जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि है, आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है। योग भी उत्कृष्ट होने चाहिए, क्योंकि योग के भी वेरिएशंस बहुत हो गए वहां पर। वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के जानना चाहिए, क्योंकि वह संगी पंचेंद्रिय सबके लिए अप्लाई हो जाता है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में, जब अपर्याप्त कहते हैं लब्धि अपर्याप्त जीव है। सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर संगी जीव, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कहेंगे तो संगी असंगी दोनों आ गए, उसमें से संगी को लेना है। सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, यानी उनके भी परिणाम योग में से उत्कृष्ट योग ले लेना। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर संगी जीव आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त तथा एकेंद्रिय विकलेंद्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवों के अपने अपने योग के अनुसार जानना चाहिए। उत्कृष्ट चाहिए। देखो एकेंद्रिय में कहते समय क्या कहना चाहिए कि बांदर पर्याप्त कहना पड़ेगा, विकलेंद्रिय में भी क्या कहने समय पर्याप्त कहना पड़ेगा। विकलेंद्रिय नहीं, द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरेंद्रिय अलग अलग लेना है, एक साथ नहीं। और पांच स्थावर कायिकों में भी क्या कहेंगे, एक एक कायिक पर्याप्त बांदर पर्याप्त कहना पड़ेगा। तो वहां बांदर पर्याप्त ये कहने की जरूरत है। अपने अपने योग के अनुसार का अर्थ क्या है? हाँ, बांदर पर्याप्त, इनमें बांदर पर्याप्त कहना पड़ेगा, उत्कृष्ट योग वाला वगैरह वगैरह। और वो पर्याप्त उनसे पर्याप्त वो एक इंद्रियों के बारे में, अपर्याप्तों के बारे में भी बादर अपर्याप्त कहना पड़ेगा। किंतु बादरों का स्वामित्व बतलाते समय बादर ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मार्गणा ही बादरों की है ना। जब हम बादर एक इंद्रिय कहेंगे तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त ऐसा नहीं कहेंगे, पर्याप्त ऐसा कहेंगे। वहां के बादरों को ही बात है तो वहां अन्यतर कहेंगे, अन्यतर पर्याप्त वगैरह वगैरह सब पर्याप्तियों से पर्याप्त ऐसा कहेंगे। यानी हमको वहां जानना है कि उस मार्गणा में योग किसके ज्यादा होता है। सूक्ष्मों का स्वामित्व बतलाते समय सूक्ष्म ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये समझ में आई ना बात। क्योंकि मार्गणा है तो उसमें मार्गणा का नाम लेने की जरूरत नहीं। जब हम पंचेंद्रिय मार्गणा कहेंगे फिर भी संगी कहना आवश्यक है। जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच मार्गणा थी अभी अपर्याप्तों की, तो वहां पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय ऐसा नहीं कहा, संगी कह दिया, क्योंकि पंचेंद्रिय की तो मार्गणा ही थी, उस मार्गणा का फिर नाम लेने की जरूरत नहीं होती। पर्याप्तकों का स्वामित्व बतलाते समय पर्याप्त ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसी की मार्गणा है तो अन्यतर ऐसा कहेंगे, उसमें अन्यतर जीव ऐसा कहेंगे। और अपर्याप्तकों का स्वामित्व बतलाते समय अपर्याप्त ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपर्याप्त ही मार्गणा है तो उसमें हम संगी ऐसा कहेंगे। ये समझ में है ना बात, कथन में क्या होना चाहिए वो बात उन्होंने बताई। अब नारके हो गए, तिर्यंच हो गए, अब मनुष्यों में छह कर्मों का भंग उग के समान है, क्योंकि मनुष्यों में वो उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी दोनों है, यानी सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, तो छह कर्मों का भंग उग के समान होता है। मोहनीय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? तो जो सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जी सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह मोहनीय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तो मेरा ये प्रश्न है लक्ष्मी जी, यहाँ ओक के समान क्यों लिखा? नहीं नहीं, वो तो ओक के समान छह कर्मों का हो ही गया, और मोहनीय का भी कोई सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि ओग में भी ऐसा ही कहा था, तो यहाँ ओग में ओग जैसा नहीं लिखते हुए ऐसा क्यों लिखा? ओग में भी ना, ओग में भी कभी पहले से नवे तक कहीं पर भी होता है। हाँ तो क्या डिफरेंस हुआ? वहाँ चारों गतियों का लिया, ये डिफरेंस है। वहाँ चारों गतियों का कहा, इसलिए यहाँ वो कथन यहाँ घर लागू नहीं होगा। देखो ओग में देख लो ना, छह कर्मों का कौन है मोहनीय के लिए? चारों गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि। अब यहाँ संगी मिथ्या दृष्टि भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मनुष्य है। हाँ, तो समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जो सात प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है, वो तो पर्याप्त ही होगा, वो सब समझ में आए, सब पर्याप्त है, उनसे पर्याप्त वो बाकी सब लागू हो जाएंगे। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। आयु में भी समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहेंगे, आठ कर्मों का बंध करने वाला कहेंगे। इतनी विशेषता है कि यह आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला होता है। आयु में तो ये कंडीशन है ही ना, जब आयु बंद हो रहे तभी तो कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों के जानना चाहिए। तो मनुष्य अपर्याप्तों में क्या होगा? पंचेंद्रिय तीरंज अपर्याप्त के समान होगा, वहां सभी अपर्याप्तों को ले लिया था। अब देवों में उपरिम ग्रहवेग तक नारकियों के समान जानना चाहिए। नारकियों के समान क्या है? वहां सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि ऐसा जो कथन होता है वो यहाँ पर भी लागू होगा। अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, जो सम्य दृष्टि सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब ये सम्य दृष्टि भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, वो सारे समय दृष्टि ही है, परंतु उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो बताने के लिए। वहां तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को कहेंगे और यहाँ समय दृष्टि ही है। तथा आयु के बारे में, जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब ये गति मार्गणा हो गई। अब इंद्रिय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा में हमने एक इंद्रिय की बात बताई थी, वहां पर पंचेंद्रिय तीरंज पर्याप्त के समान एक इंद्रिय की भी बात बताई थी, यानी स्थावर कायिकों की भी बात बताई थी। तो अभी यो नहीं बताई है, तो डायरेक्ट पंचेंद्रियों में, वहां विकलेंद्रिय की भी बात आई थी, इसलिए यहां डायरेक्ट पंचेंद्रियों को कहा। पंचेंद्रियों में छह कर्मों का भंग ओघ के समान है, यानी दसवें गुण स्थान में छह कर्मों का। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चारों गतियों का संगी, यहां पंचेंद्रिय नहीं कहा क्योंकि मार्गणा ही पंचेंद्रिय की है, पर पंचेंद्रिय में संगी असंगी दोनों आता है, इसलिए केवल संगी कह दिया। संगी मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है, वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो जब हम मोहनीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल प्रकृति की बात है ना, तो वह मिथ्यात्व में कितनी प्रकृतियां बन रही है मोहनीय की? क्या सभी? एक जीव की अपेक्षा 22, तो दूसरे में 21 मिथ्या तो बिना, तीसरे चौथे में 17, पांचवे में 13, छठे सातवें में 9। इस तरह से कितनी भी क्यों ना हो, मोहनी का माल उसमें पूरा जाएगा। फिर वो उत्तर प्रकृतियों में जब हम बंटवारा कहते हैं तो जहाँ कम से कम बनते वहाँ मैक्सिमम कहेंगे, ख्याल में यही बात। यहाँ तो वो बात अभी नहीं सोचनी हमको, बस हमें को मूल प्रकृति देखनी।
हाँ,
अपर्याप्त जीव परिणाम योग स्थान में रहता है। किस उसके लिए उत्कृष्ट कहेंगे?
पर्याप्त और अपर्याप्त में, अपर्याप्त जब भी परिणाम योग स्थान में है।
उसके योग, उसके हमने योग स्थान देखे थे, वो बहुत कम नीचे है। पर्याप्तों के परिणाम योग स्थान असंख्यात असंख्यात गुने जाता होगे। हमने 75 से 84 तक देखे थे, आपको याद होगा। तो पहले सभी अपर्याप्तों के लिए, बाद में पर्याप्तों, द्विंद्रिय से संगीत तक, याद है ना? परिणाम योग में ही लगाया था। 75 में द्विंद्रिय अपर्याप्त था, फिर 76 तीन्द्रिय, 77 चतुरिंद्रिय, 78 79 असंगी और संगी, फिर 80 81 82 83 84, ये 10 हो गए ना। तो उसमें इतना डिफरेंस है, इतने असंख्यात गुना असंख्यात गुना का डिफरेंस है। देखो पंचेंद्रियों की बात हमने देख रही थी, इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये पूरी बात फिर से लिखते हैं ना, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही समझो। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। ये पंचेंद्रिय मार्गणा थी, उसमें पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए भी यही कथन लागू होगा। त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में 6 कर्मों का भंग ओघ के समान है, जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, उपशामक या क्षपक है। शेष 2 कर्मों का भंग पंचेंद्रियों के समान है। पंचेंद्रियों में तो केवल संगी कहा था, अभी त्रसों की बात कहते समय यहां संगी पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा। क्या कहते हैं? त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में 6 कर्मों का भंग ओघ के समान है, शेष 2 कर्मों का भंग पंचेंद्रियों के समान है। इतनी विशेषता है कि जो अन्यतर चारों गतियों का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव, वहां क्या लिखा था? चारों गतियों का संगी, क्योंकि सारे पंचेंद्रिय थे। अब यहां हमने बात त्रसों के लिए, तो त्रसों में तो द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय सब आ गए, इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ऊपर केवल उन्होंने संगी और यहाँ पर भी पंचेंद्रिय कहे या संगी पंचेंद्रिय, पर वो जब हमने पहली कंडीशन बताई थी ना, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त वगैरह, वो सब समझना है, क्योंकि पर्याप्तों को ही मैक्सिमम योग होगा। अब 5 मनोयोगी और 3 वचन योगी जीवों में 6 कर्मों का भंग ओघ के समान है। हमने वो पूछा था ओघ के समान मनोयोग वचन योग को क्यों नहीं लिया था, तो यहाँ उनकी स्पेसिफिकली, क्योंकि 5 मनोयोगी, वहां मनोयोगी भी लिखते तो भी चलता है और इन 3 का नाम लेते तो भी चल जाता है, परंतु योग मार्गणा में वो अलग से बता रहे। वो 3 वचन योगी क्यों लिया? क्योंकि अनुभय अगर लेते हैं तो द्विंद्रिय से लेना पड़ता है, तो अनुभय बिना इसको ले लिया, सामान्य को भी छोड़ा और अनुभय को भी छोड़ा, क्योंकि सामान्य और अनुभय इंक्लूड करते हैं तो द्विंद्रिय से बात करनी पड़ती है। तो पांच मनोयोगी और तीन वचन योगी ये संगी पंचेंद्रीय जीव है। जीवों में छह कर्मों का भंग ओघ के समान है। अब मोनी के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चारों गतियों का सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह मोनी कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये तो हमेशा जैसे हम कहते हैं वैसा ही है, क्योंकि अभी यहाँ पर्याप्त वगैरह के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मनोयोग और वचन योग तो पर्याप्त उनके होता है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। दो वचन योगी जीवों का भंग त्रस पर्याप्तकों के समान है, क्योंकि संगी को भी ये होते हैं ना, कथन तो ऐसा ही होगा परंतु वो संगी पंचेंद्रिय लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि अनुभय और सामान्य हमको द्विंद्रिय से सब जीव उसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए वहां पर वो बताना पड़ेगा। इसी तरह पर्याप्त के संगी पंचेंद्रिय कह रहा वैसे यहाँ पर भी कहना पड़ेगा। अब योग मार्गणा में इसे वचन योग और मनोयोग हो गए सब। सामान्य से काय योगी बताए थे, अब यहाँ औदारिक काय योगी जीवों में छह कर्मों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि औदारिक काय योगी में मनुष्य आ गए और दसवा गुणस्थान भी है, तो सूक्ष्म सांप्राय में उसका उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट योग वाला वगैरह वगैरह, ये उपशामक शपक सभी कंडीशन बता देना। मोहिनी और आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अब सामान्य में जो ओघ में हमने कहा था चारों गति का कहा था, अब औदारिक काय योगी तो क्या कहेंगे हम? अन्यतः तिर्यंच और मनुष्य, संगी, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है। संगी कहने से संगी पंचेंद्रिय भी समझना चाहिए ना, संगी कहने से पंचेंद्रिय आ गए और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इतनी विशेषता है कि आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, वो भी संगी मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि ऐसा उसमें भी लागू हो जाता है। औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? देखो, जब हमने अपर्याप्त जीवों की बात की थी उसमें भी औदारिक मिश्र था, पर औदारिक मिश्र कहने से लब्धि अपर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त दोनों आ गए, और उसमें से अधिक योग किसके होगा? निवृत्ति अपर्याप्त अंतिम समय। देखो इसीलिए क्या पूछते, औदारिक मिश्र का योगी जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य, संगी, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है और अनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करने वाला है, यानी एकांत वृद्धि का अंतिम समय है। ये योग के तीन भाग बताए ना हमने, एक उपपाद योग होता है, एक एकांत वृद्धि या एकांत अनुवृद्धि कहते उसको, क्योंकि उसमें योग प्रति समय असंख्यात गुणा बढ़ता चलता जाता है। तो जो अनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करने वाला है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति का पूर्णता होते ही वह औदारिक काय योग चालू हो जाएगा, वह सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आपको क्या निवृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त के देखने हैं? निकालो, नहीं तो हम आगे पढ़ते जाएंगे और आप पीछे घूमते जाएंगे। हमने देखे थे निवृत्ति पर्याप्तों के योग स्थान बाद में बताए थे, लब्धि पर्याप्तों के पहले बताए थे। देखो आयु कर्म के पेज नंबर 17 पर चल रही बात। पहले हमने औदारिक कायोगी की बात देखी थी, उसमें केवल तिर्यंज मनुष्य लेना, यहाँ औदारिक मिश्र की बात चल रही है। नीचे से तीसरी लाइन, आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंधक का स्वामी कौन है? अब वो निवृत्ति अपर्याप्त वाला तो आयु बांधेगा नहीं, तो लब्धि अपर्याप्त ही होना चाहिए। तो जो दो गति का तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, अब यह मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? ऊपर तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि सबको लिया था, एक इसलिए कि लब्धि अपर्याप्त जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त में हमने समय दृष्टि को भी लिया था सात कर्मों के लिए, और यहाँ लब्धि अपर्याप्त ही आयु का बंद करेंगे, इसलिए मिथ्या दृष्टि लिया। आठ प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब वैकृत कायोग वाले, अब यहाँ तो नारकी और देवों को ही लेना पड़ेगा। तो वैकृत कायोग वाले जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर देव और नारकी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तो मेरा ये सवाल है, वो बहुनत्रिक वाले हो गए, सौधर्म ईशान वाले हो गए, या सर्वार्थ सिद्धि वाले हो गए? हाँ अश्विन भाई, कहीं पर भी हो, क्योंकि योग से उसके गुणस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। वैकृत मिश्र का योगी जीव में, जैसे हमने औदारिक मिश्र में देखा था, ये सारे निवृत्ति अपर्याप्त ही है और साथ ही कर्म बंधेंगे, यहाँ तो आठवें का नाम भी नहीं लेना है, परंतु शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेंगे नेक्स्ट समय में, वो लेना जीव। तो सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर देव और नारकी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करने वाला है, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, यानी जिसका योग मैक्सिमम है, कि उसमें भी डिफरेंस होगा ना, यह एकांत वृद्धि का अंतिम समय है। और उत्कृष्ट में अवस्थित है, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु बनती ने तो उसका नाम भी नहीं लिया, औदारिक मिश्र में तो आयु बांधने वाले जीव थे तो उनकी बात वहां बता दी। आहार कायोगी जीवों में ये मात्र छठवां गुणस्थान है, अभी सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर जीव सात कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आहारक मिश्र कायोगी जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति ग्रहण करने वाला है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो अन्यथा आहारक मिश्र में मरण और आयु का बंध स्वीकार नहीं, यहाँ पर स्वीकार है। कार्मण कायोगी जीवों में यह तो सात ही कर्म बंधेंगे, सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। वैसे तो मूल प्रकृति है और ये बहुत आसान विषय है प्रदेश बंध में। हाँ
हुँ?
संगी पंजनीय संगी पर्याप्त जीव चाहिए। कारमान का योग में भी पर्याप्त नाम कर्म वाले को ही वो उत्कृष्ट होगा। अब ये तो योग मार्गना हो गए, अब वेद मार्गना में स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंधक का स्वामी कौन है। अभी श्रीवेदी पुरुषवेदी कहने से यहाँ नरक बिना तीन गति का जीव कहना पड़ेगा, जो अन्यतर तीन गति का संगी मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि जीव यहाँ है वहाँ यह स्वीकार है, महाबंध में स्वीकार है, जीवकांड में उसको स्वीकार नहीं था। यानी मरण नहीं होता इसे आहारक मिश्र में मरण नहीं होता ऐसा, यह दोनों को ही स्वीकार है, महाबंध में स्वीकार है उसको। पहले हमने देखा था इसको ना, नहीं तो हमने बहुत बार ये गौर किया था। मैंने आहारक मिश्र में आयु बंध है यहाँ पर, अन्यत्र भी जब उसकी बात आएगी ना अन्य अन्य मरण की अपेक्षा से कहीं कहीं वो तो बात फिर दोबारा हम देखेंगे उसको। अभी वेद मार्गणा में देख रहे थे श्रीवेदी और पुरुषवेदी जीव में सात प्रकार के कर्मों की बात है, तो सातों को इकट्ठा लिया। अश्विन भाई क्यों? हाँ, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रदाय में छह कर्मों का जहां लेते हैं वहां वो अपगत वेदी होता है, इसलिए यहाँ तो सात छह का कभी होगा ही नहीं, यहाँ पर सात का ही रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं, संगी मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि जी, जैसे मोहिनी के लिए लेते तो सातों के लिए ऐसा ही होगा। सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वो उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। वो बाकी जो कंडीशन पहले हमने देखी सब पर्याप्त उनसे पर्याप्त वगैरह वो सब लागू हो जाती है। अब नपुसक वेदी जीवों में देखो, वहां केवल संगी कहा ऊपर, क्योंकि वो पंचेंद्रिय तो है ही, श्रीवेदी और पुरुषवेदी तो पंचेंद्रिय ही होते, केवल संगी कह दिया। अब नपुसक वेदी तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब होते हैं, हाँ तो यहां भी कहना पड़ेगा। तो नपुसक वेदी जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। अब वहां ऊपर श्रीवेदी पुरुष वेदी में मनुष्य तिर्यंच और देव लिया था, अब नपुसक वेदी में देव बिना मनुष्य तिर्यंच और नारकी लेना पड़ेगा। तो जो सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि तीन गति का जी, ये तीन गति में ऊपर भी तीन गति का है, यहाँ पर भी तीन गति का, ऊपर में मनुष्य तिर्यंच देव थे, यहाँ मनुष्य तिर्यंच और नारकी है, तो तीन गति का संगी जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वो उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार इन तीन वेद वाले जीवों में आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वह आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला होता है। अब अपगत वेदी जीवों में छह प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी ओघ के समान है, यानी उपशामक या क्षपक ले लेना है सूक्ष्म सांप्राय वाला, छह प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और उत्कृष्ट योग में अवस्थित है उसको लेना। और मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर अनिवृत्तिकरण जीव, क्योंकि अपगत वेदी होने के बाद क्या जो अनिवृत्तिकरण का काल है उसी को लेना पड़ेगा। जो अन्यतर अनिवृत्तिकरण जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अपगत वेदी उन्होंने कह दिया है, इसलिए वो वेदों की उपशमना के बाद वाला जीव ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने अनुवृत्तिकरण का अपगत वेद वाला जो पार्ट है उसी में ले लेना, इसलिए अन्यतर लिया। आयु तो बंधने का सवाल नहीं है, इसलिए सात कर्म ले लिए। सात कर्म ने छह तो ऊपर ले लिए सूक्ष्म सांप्राय में, और मोहनीय अनिवृत्तिकरण में जब सात कर्म बन रहे तब मोहनीय का उत्कृष्ट बताया। ये हो गई वेद मार्गणा। अब कषाय मार्गणा, क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों में सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? क्योंकि देखो, जब हम क्रोध मान और माया वाले कहते तो उसमें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान नहीं है, पर लोक कषाय वाले में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। हाँ, तो इसलिए ये तीन को अलग लिया। अन्यतर जो अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय संगी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। देखो भले वो श्रेणी का भी क्यों ना हो, जब क्रोध मान माया का उदय है तब तक तो सात कर्म बंध ही रहे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मूल प्रकृतियों में उसी प्रकार से होगा। देखते वो उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, ये कहने से वो जो जिस गुण स्थान में वो नहीं बनते उसको रूल आउट कर दिया, क्योंकि आठ प्रकार के कर्म बांध रहे तो कह दिया। और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये समझ में आ रही है ना बात? हाँ। अब लोभ कषाय वाले को छोड़ दिया, वो ओग के समान हमने ले लिया था, ओग में लिया था ना हमने, देखो ओग में लिया था लोभ कषाय वाला, लोभ कषाय वाले अचक्षु दर्शन वाले वहां ले लिए थे, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है ओग लोभ में। हा, अब मत्य ज्ञानी श्रुत अभी ज्ञान मार्गणा, तो पहले वो तीन मिथ्या ज्ञान के भेदों को ले लेंगे। तो उसमें मत्य ज्ञानी कहने से मत्य अज्ञानी, श्रुता ज्ञानी यानी श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी यानी कु अवधि ज्ञानी, अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों में। अब इसमें मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी में और मिथ्या इनमें पहले दूसरे गुणस्थान है। अभव्य और मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो केवल पहला गुणस्थान है। सात प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का संगी जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है वो उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब मार्गणा बता ही दी उन्होंने, तो उनमें से कोई भी जीव होगा पर संगी जीव होना चाहिए। वैसे तो अभव्यों के लिए तो सभी मिथ्या दृष्टि और अभव्य के लिए एक इंद्रिय से सभी आ गए, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी के लिए भी, पर विभंग ज्ञानी के लिए वो संगी होगा जीव। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी उत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, उत्कृष्ट योग वाला है ना, ये कहना है। क्योंकि उसमें भी वेरिएशंस होगी ना अलग अलग जीवों के, योग के वेरिएशन हो गए तो प्रदेश बंध में भी वेरिएशन हो गए। पहले उन्होंने बताए थे जैसे योग स्थान है वैसे प्रदेश बंध के स्थान है, उतने ही है और वही है, तो इसलिए यहाँ तो प्रदेश बंध की बात करेंगे। तो यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, हमेशा ऐसा ही कह सकते हैं, उत्कृष्ट योग में अवस्थित है, बात यही होगी। अब अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में, अब इसमें से चार से लेकर बारहवें गुणस्थान तक के जीव है, तो उसमें दसवां गुण स्थान भी आ गया। इसलिए छह प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंधक का स्वामी ओग के समान है, यानी उपशामक हो, यक्षपक हो। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब समय दृष्टि जीव है, संगी है, पंचेंद्रिय ही है, तो उसमें सूक्ष्म सांप्राय की बात करेंगे। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंधक का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव, अन्यत्र ओग में क्या कहते थे, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। अभी समय दृष्टि के मार्ग है ना, अभिनिबोधिक, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी की बात, तो वो क्या कहेंगे, चार गति का जीव। हाँ, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है। अब यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित कहने के बदले उत्कृष्ट योग वाला कह दिया, बात वही है। वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार ये क्या बचता है बीच में, आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ऐसा नहीं लेके नारकी को वो ज्यादा योग होता होगा या देव को कम होता होगा या मनुष्य तीन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो सकता है उसमें से। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले, यानी जो अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी के समान अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। वेदक को क्यों नहीं लिया? हाँ, उसमें वो दसवां गुण स्थान नहीं होता। हाँ, उसमें दसवां गुण स्थान नहीं होता और औपशमिक सम्यक दृष्टि में आयु कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए उसको उसके समान नहीं कह दिया। मनःपर्य ज्ञानी जीवों में छह कर्मों का भंग ओग के समान है, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान तो हम देखते हैं छठे से बारहवें तक होता है, तो उसमें दसवां गुण स्थान आ गया, तो छह कर्मों का भंग ओग के समान है, यानी सूक्ष्म सांप्राय उपशामक या क्षपक को वो उत्कृष्ट योग वाले को उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा। मोहनीय के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। अब सात प्रकार का कर्म का बंध तो छठे से नौवे तक होगा, क्योंकि दसवें में तो छह कर्म बनते हैं, इसलिए कह दिया सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, यानी उसे गुणस्थान से कोई मतलब नहीं, छठे में भी योग उत्कृष्ट हो सकता है, आठवें, सातवें, आठवें, नौवें, कहीं पर भी। वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है वो छठा सातवां गुणस्थान ही होगा, ऊपर आयु बनती नहीं है। वह और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं लिया कि जो शुभोपयोग में है वो तो योग ज्यादा होगा और शुद्धोपयोग में योग कम होगा, इसे उससे कुछ मतलब है ही नहीं यहाँ पर। हम जो बाहर की क्रिया देखते हैं, प्रवृत्ति देखते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। ये तो मनःपर्य ज्ञानी हो गए और उसी के समान अभी बताएंगे, ये तो ज्ञान मार्गना हो गए। अब संयम मार्गना की अपेक्षा सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों में, अब ये भी छठे से नवे गुण स्थान तक के ही जीव है, तो सातों कर्मों को एक साथ बताएंगे। सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर जीव, कोई भी लेना छठे से नवे तक, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। उसमें विशेषता क्या बताएंगे? इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत जीवों के जानना चाहिए। उनका भी सात कर्मों का और आयु का अलग अलग बता सकते हैं। तथा इसी प्रकार संयता संयत जीवों के जानना चाहिए। अभी तो संयम ही तो मनुष्यों में ही थे, अब संयता संयत कहने से क्या कहेंगे, दो गति के जीव लेना पड़ेगा। इतनी विशेषता है कि संयता संयतों में दो गति का जीव उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है, तीरंज भी हो सकता है मनुष्य भी हो सकता है। अब संयम मार्गणा की अपेक्षा जो सूक्ष्म सांप्राय संयत नाम का जो भेद है संयम का, उसमें तो छह ही कर्म बनते हैं, तो छह कर्मों का भंग ओघ के समान है। अब कौन से रह गए, असंयत जीव रह गए। असंयत कहले से पहले से चौथे गुणस्थान के सब आ गए असंयत जीवों में, परंतु उसमें अभी संगी पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा, क्योंकि असंयत कहने से एक इंद्रिय भी आ गए उसके अंदर। तो असंयत जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, यहाँ सात या आठ ही बंधेगी प्रकृतियां, जो अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय संगी सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। सभी कंडीशंस बता दी, वह सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, यानी वो पंचेंद्रिय संगी समय दृष्टिया मिथ्या दृष्टि वो सब पर्याप्ति से पर्याप्त, पर विशेषता क्या होगी, इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। चक्षु दर्शन वाले जीवों में त्रस पर्याप्तकों के समान बन गए, यानी वो संगी पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा, क्योंकि चक्षु दर्शन वाले तो चतुर इंद्रिय भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, संगी भी होते हैं। अब लेशा मार्गणा की बात करेंगे। पहले हमने संयम मार्गणा ज्ञान मार्गणा सब हुए, ज्ञान संयम अभी लेशा, तो उसमें कृष्ण नील की बात पहले उठाएंगे। कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले जीवों में सात कर्मों के, अभी चौथे गुणस्थान तक ही ये लेशा पाई जाती है, तो उसमें सात या आठ कर्म ही बंधेंगे, तो सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर तीन गति का देव बिना, यानी मनुष्य तीरंज और नारकेलिय, तो जो अन्यतर तीन गति का पंचेंद्रिय संगी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। देखो अनुभाग में तो हमको सोचना था कृष्ण का उत्कृष्ट अनुभाग, कृष्ण लेशा में अप्रशस्त कर्मों का, तो हमने देखा था मनुष्य तीरंज नारकी कोई भी हो सकता था, और नील कपोत में नारकी को लिया था, ये कुछ विशेषता थी। यहाँ योग में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, हाँ तीनों गति का ले। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी वो प्रदेश बंध का रिलेशन डायरेक्टली योग से संबंधित है। पीत और पद्मलेशा वाले जीवों में शुक्ललेशा वाली की बात छोड़ी, क्योंकि उसमें दसवां गुणस्थान होगा। पीत और पद्म में सात कर्मों के, सात को इकट्ठा लेना है, क्योंकि यह सात बंधेंगे या आठ बंधेंगे, तो सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर तीन गति का समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है। अब पीत और पद्म में मनुष्य तीर्यंश और देव लेना, कृष्णनील कापोत में मनुष्य तीर्यंश और नारकेल लिया था, तो तीन गति का समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये देवायु बांधने वाला ज्यादा बांधेगा या मनुष्य, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। शुक्ल लेशा में हमने ये भी देखा था, जब आयु अधिक बनती है यानी स्थिति ज्यादा बनती है आयु में, अनुभाग भी ज्यादा बनता है। यहाँ तो ऐसे कोई स्थिति से भी मतलब नहीं है, ये योग से होगा, जितनी कुछ स्थिति बनेगी उसी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब शुक्ल लेशा में, शुक्ल लेशा में श्रेणी भी है, तो वह 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी ओघ के समान है, यानी सूक्ष्म सांप्राय वाला लेना है, उपशामक या क्षपक लेना। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो 3 गति का, क्योंकि यहां पर भी मनुष्य 3 इंच और देव लेना है, 3 गति का समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अब जो हमने ऊपर छोड़ा था उसको ले रहे वेदक सम्यक्त्व में, इसलिए छोड़ा था कि उसमें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान नहीं है, तो उसमें 7 कर्मों की बात इकट्ठा करेंगे। तो वेदक सम्यक्त्व में 7 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर 4 गति का जीव, वेदक सम्यक्त्व मार्गणा है, तो समय दृष्टि कहने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, ओग में तो समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि कहना पड़ता था, तो यहाँ तो जो अन्यतर 4 गति का जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त 7 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। यानी वो चौथे वाला हो, पांचवे वाला हो, छठे वाला हो, सातवें वाला, कोई भी ले सकते। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, जब वो आयु बंध रहा है तभी की बात लेना, और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। तो सम्यक्त मार्गणा में से वेदक सम्यक्त को लिया। अब उपशम सम्यक्त में, अब उपशम सम्यक्त द्वितीय उपशम भी उसमें ले सकते हैं, तो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान भी आ गया। उपशम सम्यक्त में 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो सूक्ष्म सांप्राय उपशामक जो उपशामक कहा है, यहाँ पर 6 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त 6 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो 4 गति का जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अतः 7 प्रकार का कर्म का बंध कर रहा है तो वो कहाँ तक का जीव लेना है? 4 से, अरे 9 तक, मोहनीय का बंध चल रही बात, 6 कर्मों की अलग बात हो गई ना, हाँ 4 से 9 गुणस्थान। मोहनीय की हो गई बात है, अभी आयु बनती नहीं है तो उसका सवाल ही नहीं है उसका कहने का भी, इसलिए 6 कर्मों के लिए सूक्ष्म सांप्राय उपशामक लिया और मोहनीय के लिए 4 गति का जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है। अब साधन सम्यक्त में, ये सम्यक्त मार्गणा की कुछ छोड़ दिए थे ना उसकी बात हो रही, साधन सम्यक्त में 7 प्रकार के कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर 4 गति का जीव 7 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। वो आठ का बंध कर रहा है, इतनी विशेषता है। जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। सम्यक मिथ्यात्व में, अब यहाँ सात ही कर्म बनते हैं, यहाँ पर भी आयु नहीं बनती है, तो सम्यक मिथ्यात्व में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव, चारों गतियों में सम्यक मिथ्यात्व है और उसमें तो कोई योग में तो कोई गति की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, तो इसलिए कोई भी जीव हो सकता है। चार गति का जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, यानी उसके उत्कृष्ट योग वाला है, ये कहना चाहते हैं। वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। ये तो सम्यक तो मार्गणा जो बीच में रह गई थी उसको पूरा। अभी संगी जीवों में छह कर्मों का भंग हो के समान है, क्योंकि संगी मार्गणा है तो उसमें तो ये सभी गुणस्थान हो गए। कितने गुणस्थान हो गए संगी के? 1 से 12। बहुत अच्छा, क्योंकि 13-14 को संगी मार्गणा में इंक्लूड नहीं करते। हाँ, जीव समास में जो संगी पंचेंद्रिय कहेंगे उनको, तो ओक के समान है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान लेना। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो चार गति का सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है। अभी वो पहले गुणस्थान से 90 तक कोई भी ले सकते हैं, वह मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इस संगी मार्गणा में अभी असंगी की बात करेंगे। असंगी जीवों में असंगी कहेंगे तो असंगी कहने से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब आ गए, तो जब असंगी की मार्गणा कहेंगे तो पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा। तो असंगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर पंचेंद्रिय जीव, अब यहाँ असंगी पंचेंद्रिय कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि असंगी मार्गणा है, सब पर्याप्त है, उनसे पर्याप्त है। इसलिए यहाँ असंगी का नाम अलग से नहीं बताया। सात प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार आयु कर्म के, ये आयु दो बार छपा है, आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी जानना चाहिए, यानी वो भी पंचेंद्रिय जीव ही, उसकी को योग ज्यादा होगा। इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, कर भी दो बार हुआ है, और उत्कृष्ट प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी है। अनाहारक जीवों में कार्मण का योगी जीवों के समान जानना चाहिए। क्या कहेंगे अनाहारक में? चारों गति का ले लेंगे, और यहाँ तो सात कर्म ही बनते हैं। समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को ले, उत्कृष्ट योग वाला होगा। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अब जघन्य में हमको देखना है। जघन्य में तो हमने जो पहले उसके देखे थे सूक्ष्म निगो लब्ध पर्याप्त के बाद उपपाद योग को देखा था कि जघन्य का प्रकरण है। देखो अभी तो आसान लग रहा है, जब वो एक एक उत्तर प्रकृति आएगी ना तो हमको जाना ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओवर आदेश। लास्ट टाइम हमने लिखा था कर्मकांड पेज 237, कल हमने वो सब पढ़ के बताए थे ना, 84 उसके जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त को पहले स्थान में लिया था। ओह से सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव अपर्याप्त है, प्रथम समय में तद्भवस्थ हुआ है, जघन्य योग वाला है और जघन्य प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। वहां उसका योग भी जघन्य होता है, इसको उपपाद योग कहेंगे। वहां तो आयु नहीं बनती है, आयु तो परिणाम योग में बंधेगी। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव है ना, यहाँ पर क्षुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समय में आयु बंद कर रहा है। प्रथम समय में इसलिए लिया कि यहां से उनका परिणाम योग चालू हो गया है, वो यहाँ जघन्य है, जघन्य योग वाला है और जघन्य प्रदेश बंध में अवस्थित है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। फिर से
सात कर्मों का जघन्य बंध तो
उपपाद में लिया, परिणाम योग का पहला समय वहाँ सात की कहाँ बात की, वहाँ आयु की बात की। जगन्य के लिए उपपाद में लिया,
हाँ
यहाँ पर इसलिए है कि वहाँ एकांत वृद्धि के असंख्यात गुना असंख्यात गुना और परिणाम योग स्थान उसके भी असंख्यात गुना, वो योग कितना असंख्यात गुना हो गया। यहाँ केवल सातवें डिस्ट्रीब्यूशन या आठवें डिस्ट्रीब्यूशन इतना डिफरेंस पड़ा, पर ये योगों में कितनी बार असंख्यात गुना बात, क्योंकि सभी के उपपाद हमने देखे थे, संगी पंचेंद्रिय के उपपाद तक देखे थे और बाद में लौट कर यहाँ उनके एकांत वृद्धि हो गए, फिर उसके परिणाम अलग बात हो गए। हाँ, बहुत बड़ा उस डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी एकांत वृद्धि के सभी समासों की बात करके फिर लौट कर हम परिणाम योगों पर आए थे। निकालो, अभी पुस्तक लाई ना आप, ये देना उनको, उधर देना। क्योंकि उपमान और वो परिणाम योग में बहुत डिफरेंस है ना। देखो 237 पर पहले में सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त का उपपाद योग स्थान है, फिर क्रम से निवृत्ति अपर्याप्त, फिर लब्धि अपर्याप्त का उपयोग, उत्कृष्ट उपपाद, क्योंकि उपपाद में भी जघन्य उत्कृष्ट के भेद बदे। अब देखो अपनी संख्या बतानी है आपको, पेज नंबर 238 पर चले जाओ। अभी सभी के उपपाद 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 लिया हमने, कहां तक? संगी के उपपाद तक चले गए थे, एक 29 नंबर पर देखो, संगी पंचमी निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान देखा था। यहां तक समझ में आई ना बात? 29 नंबर पर, हाँ, 30 निवृत्ति बादल एक लब्धि पर्याप्त का, हाँ एकांत, अभी उसमें हमको लेना है एकांत अनुवृद्धि से, है ना, वही तो कह रहे। और एकांत अनुवृद्धि से परिणाम कितना असंख्यात गुना होगा, और आयु कब बंधेगी? परिणाम योग। अब जो आयु के लिए कहाँ देखते हम, हाँ तो उसमें परिणाम योग स्थान लेने ना, सूक्ष्म निगोद का परिणाम योग स्थान कितने नंबर मिला? 21 अनुवृद्धि नहीं, हमको परिणाम योग चाहिए। उत्कृष्ट चाहिए।
हाँ
जघन्य की चाहिए, परिणाम योग 37। हाँ 37 सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान है ना, तो इतना डिफरेंस है वहां पर। उसके पहले तो हमने अन्य भी ले लिए थे, हाँ पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान वगैरह लिए थे, निवृत्ति पर्याप्त वगैरह का। इसलिए वो सारे बारंबार अपने याद तो नहीं रहते ना। मैंने पूछना ना, जरूर पूछना, तो उसमें क्या लेना है। अभी देखो आयु के लिए क्या लिया था हमने, आयु कर्म के जघन्य प्रदेश में जो अन्यतर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव क्षुल्लक बहुग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समय में आयु बंद करे और जघन्य योग वाला है, उसको हमने नंबरिंग कितना दिया था, 37 था। हाँ यहाँ पर नहीं, वहां पर कर्मकांड। और वहां पर तद्भवस्य वाला नंबर एक पर था, हाँ पहले के असंख्यात विभाग गुना होकर गया है, और उसमें भी अंतर आया होगा ना, बीच में अंतर भी आए थे, जगत शनि के असंख्यात विभाग प्रमाण तो अंतर आ जाते हैं। हाँ तो यहाँ हमने आयु की बात देखी थी जघन्य योग वाली। अभी 22 पेज पर है ना, महाबंधक के अपनी छठी पुस्तक का पेज नंबर 22। हमने सात कर्मों का जघन्य और आयु कर्म का जघन्य पढ़ लिया। इसी प्रकार अभी जैसे ये हमने ओक की अपेक्षा जघन्य का स्वामित्व बताया, ऐसा ही सामान्य तीर्यंच अभी जिसमें इसमें सूक्ष्म निगोद की बात आती है उसको इसमें ले लेंगे। एकेंद्रिय वनस्पति का एक, निगोद काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और आहारक जीवों में ओग के समान भंग है। ये समझ में आई बात, क्योंकि वो तो सूक्ष्म निगोद को ही स्वामी कहना है, तो जिन जिन मार्गणाओं में सूक्ष्म निगोद इंक्लूडेड है ऐसे सब मार्गणा यहाँ बता दिए। अब आदेश से ने भी मार्गणाओं में देखेंगे हम, तो गति मार्गणा में पहले पूछेंगे, तो नारकियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। अभी हम उत्कृष्ट देख रहे थे ना, अभी जघन्य में क्या सोचना था हमको, तो उपपाद योग को देखना पड़ेगा। तो उपपाद में भी असंगी से आया हुआ देखें। देखो नारकियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर जीव असंगियों में से आकर नारकी हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ऐसा ही हमने कहा लिया था, याद है आपको, ऐसा ही कहा लिया था जघन्य की, जघन्य यहाँ योग की बात की थी, असंगी से आया हुए की बात कहाँ उठाई थी आपको याद है, क्वेश्चन नहीं बैठता। अभी हम प्रदेश बंध में जघन्य की बात कर रहे हैं, वहाँ असंगी से मरकर आया हुआ की बात की, और कहाँ लिया था, स्थिति में लिया था क्योंकि वो असंगी के योग्य स्थिति बंध करता है कारमाण का योग में। हाँ तो यहाँ योग में भी ऐसा ही लिया कि जो असंगी से आकर नारकी हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है, ये उपपाद योग लेना था, उसमें भी जघन्य योग वाला है, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, अब आयु कर्म तो परिणाम योग में बनती है, तो अन्यतर समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, घोलमान जघन्य योग वाला जीव। अब घोलमान जघन्य योग वाला जीव यानी परिणाम योग में, परिणाम योग में क्या होता है, वो कभी कभी योग बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी उतना रहता है, उसको घोलमान योग कहा। उसमें भी जघन्य योग मिला, यानी परिणाम योग में से जघन्य योग वाला हुआ था, वो आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में तथा सामान्य देव, प्रथम पृथ्वी क्यों ली, असंगी से आया हुआ लेना है, हाँ, और कहाँ लेना है, तथा हाँ असंगी से आया हुआ लेना है ना, इसलिए प्रथम पृथ्वी में तथा सामान्य देव भवनवासी और व्यंतरोंगी जानना चाहिए। ज्योतिषियों में नहीं कहा, क्योंकि वहां असंगी जीव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि असंगी जीव देवायु बांधेगी या नरकायु भी बांधेंगे तो पल्ले के असंख्यात भाग इतनी बांधते, और ज्योतिषियों की जघन्य आयु पल्ले के आठवें भाग प्रमाण है, तो असंगी मरकर ज्योतिषी में नहीं जाते, वैमानिकों में नहीं जाते, जाएंगे कहां, भवनवासी व्यंतरों में। और सामान्य देवों के लिए भी वही कथन होगा, क्योंकि भवनवासी व्यंतर तो सामान्य देवों में इंक्लूडेड है। हाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण एक इंद्रियों में भ्रमण करके, हाँ वो देखो एक इंद्रियों में तो भ्रमण किया, परंतु एक इंद्रिय से डायरेक्ट तो नहीं आता है ना देव में या नरक में, बीच में असंगी का भोग तो करना पड़ेगा। क्या 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 वो मनुष्यों के मार्गणा में, अभी नहीं, एक इंद्रिय से भी क्यों नहीं आए हो, वो असंगी जैसा बंद करेगा, एक इंद्रिय जैसा नहीं, एक इंद्रिय जैसा नहीं, असंगी जैसा, कितना भी क्यों न हो, अन्यतर एक इंद्रिय में से आया हुआ, एक इंद्रिय से असंगी तक कहीं से भी आया हुआ उसको ले लेना, वो बात हम कल करेंगे। ये आदेश से वहां से शुरुआत से ले देते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा पढ़ा नहीं ना अभी। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो।